हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है।
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें।
नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुखोई 30 मार्क 1 से लंबी दूरी के पहले ग्लाइड बम्ब गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रेजिडेंस डॉक्टर संघ के संगठन ने कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में जारी हड़ताल वापस ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ली। निर्वाचन आयुक्त आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए आंतरिक सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। अमरीका ने इसराइल के साथ $20 अरब के हथियार बिक्री सौदे की स्वीकृति दी। और मौसम विभाग ने केरल के पत्तनम थिट्टा और इडुकी में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वायुसेना के सुखोई 30 मार्क 1 लड़ाकू विमान से पहले लंबी दूरी तक मार करने वाले ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा तट से किया गया। एक रिपोर्ट।
गौरव हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है। इसे हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा स्वदेश में निर्मित और विकसित किया गया है। परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और वायुसेना की प्रशंसा की है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास और सैन्य बलों की दक्षता बढ़ाने में इसे प्रमुख उपलब्धि बताया। आनंद रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनल इसे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित करेंगे। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी संबोधन में प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका प्रादेशिक भाषा में प्रसारण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देशभर में हर घर तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान कल तक पूरे देश में चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 600 फुट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक नागरिक के दिल में देशभक्ति की जड़ें गहरी हैं और ये राज्य की आकर्षक सांस्कृतिक विरासत में स्पष्ट तौर पर झलकती हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के प्रति इतना उत्साह दिखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक विशेषकर युवाओं से सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट।
विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए लोगों में देश भर से पंचायतों की महिला प्रतिनिधि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं, जो देश में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आमंत्रित पदाधिकारी मंत्रालय की कई योजनाओं से संबंधित हैं, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के सभी आमंत्रित व्यक्ति राज्यों की पंचायतों से हैं। विशेष अतिथियों को देश को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को सराहने के साथ साथ ऐतिहासिक राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बनने और जीवन एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैनात कर्मचारियों की सुविधा के लिए कल दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि जिन लोगों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र जारी किया गया है, उन्हें ही वैध प्रमाण पत्र देखने के बाद मेट्रो में प्रवेश दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच मेट्रो रेल 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष देश पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। इसका विषय होगा चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इसरो के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और बेंगलुरु में यूआर राव उपग्रह केंद्र के निदेशक एम शंकरन ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की प्रासंगिकता पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की।
We all feel that while we celebrate the Chandrayaan 3 success every year, we are taking this as an opportunity to remind ourselves of the work to be done by us in future.
रेजिडेंस डॉक्टर संगठन संघ ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में अपनी हड़ताल वापस ले ली है। संघ के प्रतिनिधिमंडल की कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इस घटना को लेकर देशभर के डॉक्टर सोमवार से ही विरोध प्रदर्शन कर रखे थे। संघ के अध्यक्ष अविरल माथुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों को समयबद्ध तरीके से निपटाने का आश्वासन दिया है।
हम लोग श्री जेपी नड्डा जी से मिले हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे। जो हमारे डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। हमारी जो मांगे थी उनको अभी मांग लिया गया है, अब हम इसे कॉल ऑफ करेंगे।
श्री नड्डा ने हड़ताल वापस लेने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टरों को सुरक्षित और काम करने का बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उनकी सभी चिंताओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री कुमार ने इस बात पर बल दिया कि आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकती। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी रूप में आतंकवाद की कड़ी निंदा की है तथा आतंकवाद से व्यापक और निरंतर लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की कल नई दिल्ली में 14वीं बैठक में ये बात कही गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के लिए परोक्ष रूप से की जा रही आतंकी कार्रवाई की निंदा की है। दोनों देशों ने घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में आतंकवाद रोधी संयुक्त सचिव केडी देवल और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग में आतंकवाद निरोध के राजदूत रिचर्ड फेक्स ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमरीका ने इसराइल को लड़ाकू जेट और हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलों सहित $20 अरब के हथियार की बिक्री की स्वीकृति दी है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कल इसकी घोषणा की।
मंत्रालय ने कहा है कि संभावित बिक्री में 50 से अधिक F-15 लड़ाकू विमान, मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल, 120 mm टैंक, गोला बारूद और उच्च विस्फोटक, मोर्टार तथा सामरिक वाहन शामिल हैं। इस दीर्घकालिक सौदे में F-15 जेट विमानों की आपूर्ति वर्ष 2029 तक की जाएगी। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अमरीका इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में ईरान में हमास नेता इस्माइल हनिया और लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य कमांडर आज शुक्र की हत्याओं के बाद पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध की आशंकाओं के बीच इसराइल ने अमेरिका के साथ अरबों डॉलर का हथियार सौदा किया है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
यमन की राजधानी सना में आतंकी संगठन हुती ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त कार्यालय को जबरन बंद करवा दिया। संगठन ने विशिष्ट जानकारी वाली एक हार्ड डिस्क सहित विभिन्न सामान, वाहन और दस्तावेज जब्त कर लिए। छापेमारी के बाद हुती के लड़ाकों ने कर्मचारियों को बाहर निकालकर कार्यालय को बंद कर दिया। मौसम विभाग ने केरल में पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भागों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश जारी रहेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल और पूर्वोत्तर भारत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ महिला पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेलों की मध्यस्थता अदालत ने एक बार फिर अपना फैसला टाल दिया है। अब 16 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले अदालत का फैसला कल रात को घोषित किया जाना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक 2024 का उद्घाटन करेंगी। यह उद्यान शुक्रवार से जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को अमृत उद्यान देखने के लिए खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया।
धन्यवाद नवीन। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। वहीं अमर उजाला लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर रेजिडेंस डॉक्टरों ने देर रात हड़ताल वापस ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के प्रयास में अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस के कल बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा करने को कई अखबारों ने अपने पहले पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, भारत के दबाव के बाद सुरक्षा का भरोसा, हिंदुओं के बीच पहुंचे यूनुस, कहा बांग्लादेश पर सभी का बराबर हक। अमर उजाला के शब्द हैं, हिंदू समुदाय को यूनुस का भरोसा, हमला करने वालों को मिलेगी सजा। अमरीकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों की जीपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति का वक्तव्य, भारत विरोधी ताकतों व खतरनाक मकसदों वाले रहे बेहद सतर्क, राष्ट्र सहारा की सुर्खी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुखोई 30 मार्क 1 से लंबी दूरी के पहले ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रेजिडेंस डॉक्टर संघ के संगठन ने कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में जारी हड़ताल वापस ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की। निर्वाचन आयोग आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक करेगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए आंतरिक सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।